ओम शांति। आज की इस नुमा शाम की वेला में हमारे बीच तपस्वी रत्न भोपाल जोन का गौरव परम श्रद्धेय अवधेश दीदी जी हमारे बीच है। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि आपके मुखारविंद से, अमृत वचनों से हम सभी लाभान्वित होंगे। परम श्रद्धेय दीदी जी आज हमारे बीच हैं। बाबा की बगिया के सुंदर पुष्प रूहे गुलाब, प्रसन्नता जिनके व्यक्तित्व से झलकती है, ऐसे प्रसन्नचित व्यक्तित्व की धनी आदरणीय अवधेश दीदी जी बहुत सुंदर और गहन विषय के ऊपर हम सबको लाभान्वित करेंगे, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। तो आपने लंबे काल से ही बाबा के ज्ञान और योग को अपने जीवन में उतारा है और तपस्या आपके व्यक्तित्व में निखरती है, ऐसे अनुभवी रत्न हमारे बीच में हैं। आप वर्तमान समय भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल जोन की मुख्य क्षेत्रीय संचालिका है। स्थिरता, गंभीरता, रमणीकता जैसे दिव्य गुणों से विभूषित है और बहुत सुंदर हम अपने स्वस्थिति को कैसे बनाए और परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त करें, दीदी जी से हम सुनेंगे। पुनः एक बार हम दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान समय हम और आप सभी उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम सबको अपनी स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। हम वो खुश नसीब विशेष में विशेष महान आत्माएं हैं जिनको भगवान ने ऐसी पढ़ाई है जो सारे विश्व के मालिक बनने वाले। तो बाबा साफ शब्दों में इस बात को कई बार समझा चुके हैं और समझाते रहते हैं कि वर्तमान समय ही हमें इस स्थिति को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट साधारण सब्जेक्ट नहीं है। स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय, ये वो स्थिति है जिस स्थिति को संसार में लोग भले गाते हो पर कर नहीं पाते। और बाबा हम बच्चों को उस स्टेज पर ले जाने की पूरी ट्रेनिंग दे रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम स्वयं का आत्मदर्शन करें। दुनिया में तो दर्शन की बात छोड़ दीजिए, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, सही पहचान नहीं है। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने पहचान दी है, स्पष्ट पहचान दी है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में इस बात को बहुत अच्छे रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? जिसको हम भले नहीं समझ पा रहे लेकिन बाबा समझा रहे हैं। दुनिया में जब भक्ति में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं, हम नेगेटिव बोलते हैं, हर बात में हम नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन बाबा ने मेडिटेशन का सरल तरीका कौन सा बताया है? मैं आत्मा, विशेष आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। ये सारे स्वरूप का जो रियलिटी है, जो हमारी आत्मा की रियलिटी है, उसका एहसास बाबा हम बच्चों को कराते। तो मेडिटेशन केवल वर्णन नहीं, रियलाइजेशन, वो अनुभूति। अगर हम थोड़े समय के लिए उस प्रकार की अनुभूति में चले जाएं, तो निश्चित ही हमारे सामने फिर कोई भी कैसी भी परिस्थिति आएगी, हम उस पर विजय पा सकेंगे। अगर हम अपने मन के अंदर जरा भी क्या, क्यों, कैसे इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। और कमजोर आत्मा कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का एहसास भी करना है, अपना स्वयं का दर्शन भी करना है, और उस स्टेज पर हमें वो अनुभूति भी करनी है कि मैं आत्मा कितनी महान आत्मा हूं। इस महानता के आधार पर स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को चुना है। और ये बात निश्चित है कि ऐसी दुनिया आने वाली है जहां कोई परेशानी नहीं, ना ही लौकिक दुनिया के हिसाब से, ना ही अलौकिक दुनिया के हिसाब से, ना ही शारीरिक बीमारियों के रूप से, ना ही मानसिक बीमारियों के रूप से किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभ्यास, ये पुरुषार्थ हमारा यहीं से प्रारंभ होता है। चाहे हमारे अंदर इस प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं, तो निश्चित ही परिस्थितियां साइड हो जाती हैं। तो आज के शुभ दिवस पर हम इस बात का दृढ़ संकल्प लें कि मुझे अपनी स्व स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि मेरे सामने कोई परिस्थिति आए, वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। आप सभी ने वर्तमान विज्ञान के आधार से भी सुना होगा, पढ़ा होगा और इस राज को समझा होगा कि जो भी परिस्थिति होती है, जो भी घटना दुर्घटना होती है, जो भी बीमारियां होती हैं, 90% तो हमारी मानसिक होती है। कुछ मन में कहीं न कहीं ऐसी कमी, कंप्लेन छिपी हुई होती है जो अनेकानेक बीमारियों का कारण बन जाती है। तो 90%, 10% उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, दवा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो 10% का है। अगर हमारे पास कितनी भी अच्छी दवाएं हों और मेरे मन में ये संकल्प आ जाए कि मुझे जीना नहीं है, ये दुनिया बहुत खराब है, मैं तो बहुत परेशान हूं, तो लाखों रुपए आप खर्च करें आप स्वस्थ नहीं हो सकते, आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मनोबल डाउन हो चुका है। इसलिए हमें 90% जो एनर्जी क्रिएट करनी है वो आत्मा की। शरीर की तो जो पोजीशन है उस पर भी आत्मा का प्रभाव पड़ता है, आपने सुना होगा, और प्रैक्टिकल के ऐसे अनुभव आते हैं। और हमने बहुत सारे अनुभव दुनिया के हिसाब से भी देखे हैं कि आत्मशक्ति, आत्मदर्शन, दूसरा परमात्म दर्शन बहुत बड़ी ताकत है। हम दिल्ली में एक जगह विज्ञान भवन में अवार्ड देने के लिए गए थे। जब अवार्ड हम दे रहे थे उसमें एक ऐसी 15-16 साल की बच्ची जिसकी एक टांग बिल्कुल नहीं थी, घुटने से कटी हुई थी, और वॉकर के हिसाब से वो हमारे पास स्टेज पर आई, तो मैंने उनको बैठाया कि 5 मिनट आपसे बात करनी है, तो रुकी वो। मैंने उससे प्रश्न किया, उसने प्रथम प्राइस ली थी, कि आप ये बताओ कि आप जैसे बच्चे बच्चियां आप जैसे थे उनके साथ दौड़ लगा रही थी, आपने फर्स्ट प्राइज विनर किया, या सबके साथ जिनकी दोनों टांगे हैं उनके साथ भी आपने रेस की? उसने कहा, दीदी मैंने 2 टांगों वालों के साथ की है, 1 टांग वाली तो मैं ही थी अकेली, तो फर्स्ट नंबर आपने कैसे लिया? तो ये बात बता रही हूं आपको, उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैं हमेशा ही रेस में भाग लेती थी, लेकिन एक्सीडेंट में, बस के एक्सीडेंट में मेरी 1 टांग एकदम कट गई, बहुत दुखी हो गई। मैं भगवान कृष्ण को मानती हूँ, बहुत रोती थी, और जब ऐसा रेस कंपटीशन का अवसर आया तो भगवान से मैंने याचना प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि जब तुम दौड़ लगाओ तो बॉकर को तो फेंक देना, मैं तो अपनी टांग दूंगा दौड़ लगाना। उसने ऐसा ही किया कि जैसे ही रेस का नंबर आया बॉकर उसने फेंक दिया और ऐसे दौड़ लगाई जैसे मेरी दोनों टांगे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास। अगर मन में ये आ गया कि बॉकर से तो कुछ दौड़ लूंगी, बिना बॉकर के भी टांगे नहीं है और नहीं सफल हो पाई, तो नेगेटिव आ जाता ना, वही हार है। तो ऐसा हम अनुभव करें, ऐसी अनुभूति कब हो सकती है? जब हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं और ऐसी परिस्थिति के समय पर हम अपनी आत्मशक्ति परमात्म शक्ति का प्रैक्टिकल प्रयोग करें। अगर प्रयोग नहीं किया तो हम कैसे विश्वास जता सकते, कैसे दूसरों को विश्वास दिला सकते हैं? कई भाई बहन इस बात को बार बार कहते हैं कि बहन जी, जब से हम बाबा के बने हैं तब से परीक्षाएं परीक्षाएं। हम सोचते हैं अब परीक्षा खत्म हो, अब परीक्षा खत्म हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं परीक्षाएं भी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जाती है। तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं, घर में ही हम रहते हैं, तब परीक्षाएं आती हैं क्या? परीक्षा ना माना, स्कूल में प्रवेश करना। स्कूल में प्रवेश करने के बाद ही तो परीक्षाएं आती हैं, और परीक्षाएं बड़ी बड़ी कब होती है? जैसे जैसे हमारी पढ़ाई होती है, जितनी ऊंची पढ़ाई होगी उतनी ऊंची परीक्षाएं आती हैं। और ये बाबा कितनी बार कह चुके हैं कि आप रुस्तम बनेंगे तो माया भी आपसे रुस्तम होकर के लड़ेगी। अब इन सेंटेंस को, महावाक्यों को याद करना, यूज करना और प्रैक्टिकल रूप देखना, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो परिस्थितियों को देख करके परेशान नहीं होना है, परिस्थितियों को देख करके अपनी शान में रहना। ये परीक्षा ही है, इस परीक्षा में हमको पास होकर के दिखाना है। जब ऐसा हमारा आत्मविश्वास होगा, परमात्म विश्वास होगा, तभी हम विजयी घोषित होंगे। और फिर आप सभी को ये बात तो स्पष्ट रूप से बाबा ने समझाई है कि बच्चे आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, बताओ उद्देश्य क्या है। पहले हमें बाप समान बनना है। लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे ना, यहां क्या बनना है? यहां तो बाप समान बनना है ना। जब बाप समान बनेंगे तो परिस्थितियां परीक्षाएं तो यहां है ना, सत्य में तो नहीं होंगी, सत्य में तो पेपर नहीं देंगे आप, वहां तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी पढ़ाई, सारी परीक्षाएं हम कहां देते हैं? तो अभी हमारी स्टेज कैसे होनी चाहिए? बाप समान। बाप समान माना बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा एकदम साक्षी और उपराम होकर के देखते हैं, संसार की कोई भी परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, साक्षी होकर देखते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो हमारी स्थिति भी कैसी होनी चाहिए कि हम न्यारे और प्यारे बन के रहें, परेशान नहीं हो। बाबा कहते हैं परेशान कौन होते हैं? जो अपनी शान से परे होते हैं, जो अपनी शान में नहीं रह पाते हैं वो नर्वस हो जाते, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हिम्मत हार जाती है। जब युद्ध के मैदान में है तो योद्धा हमेशा ये समझता है जो भी योद्धा आए मेरे सामने मुझे उस पर विजय पानी है। किसी प्रकार की भी कोई परीक्षा कोई समस्या आए तो मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो मुझे टैली करना है कि बाबा की शक्तियों जैसी क्या मेरे अंदर वो शक्तियां हैं, बाबा के पास में जो विशेषताएं हैं जो गुण हैं क्या मेरे पास हैं। अगर कहीं भी कोई कमी कंप्लेन है तो अपने को चेक करना है, क्योंकि यहां जो चेकर बनेगा वही भविष्य का मेकर बनेगा। तो वो चेकिंग हमको यहां करने के लिए ये फील्ड है, बाबा ने फील्ड दिया है, ये क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र है। इसलिए हमें इस बात को बार बार रियलाइज करना है कि हम किसी प्रकार की परिस्थितियों में हार नहीं खाने, ये याद रखना है। युद्ध स्थल है जीवन तेरा, युद्ध स्थल है जीवन तेरा, ओ भारत के वीर सिपाही। हारना न हिम्मत बढ़ते चलना जीवन मुक्ति के शैदाई। लोक लाश शर्माएगी शर्माना ना, अति निकट के साथी भी साथ तेरा सब छोड़ेंगे घबराना ना। परिस्थिति आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, कारण बनेंगे, लेकिन हमें कारणों पर विजय प्राप्त करके हमें निवारण करना है। क्योंकि पढ़ाई में क्वेश्चन भी होते हैं और क्वेश्चन के आंसर भी होते हैं, हमें तो ये अटेंशन देना है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, जब हम आंसर को देखेंगे तो हमको वंडर लगेगा कि अरे वाह, इस क्वेश्चन का ये आंसर है और हम इस आंसर को यूज करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। पर हो कब जाएगा, जब यूज करेंगे। जब दुनिया में बाबा ने ये एहसास करा दिया है, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, तो हमें ये शब्द याद रहने चाहिए कि जहां चिंता की बात आ रही है, जहां टेंशन की बात आ रही है, वहां बाबा के ऊपर छोड़ देना है। मैं आपको अपने जीवन का एग्जाम्पल बताती हूं। मैं यहीं पर इंद्रप्रस्थ में थी, सवेरे सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक की क्लास करानी थी। अचानक फर्श पर किसी बहन ने साबुन का पानी फैला दिया, फैल गया, जानबूझ के तो नहीं फैलाया, फैल गया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया वैसे मैं धड़ाम से गिरी, इतने जोर से गिरी को उठना मुश्किल था। ये जो टांग है ना, इतना दर्द कि मैं ये सोचने लगी कि अभी मुझे स्टेज पर जाना है, क्लास करानी है। और मालूम है क्लास का, जैसे आज का टॉपिक है ना, तो क्लास का टॉपिक क्या था, योग की हाईएस्ट स्टेज। मैंने कहा मेरी तो हो गई हाईएस्ट स्टेज, अभी क्लास कराने जाना है, अभी घुटना टूट गया, पर उठना मुश्किल था। बाबा को याद किया तो बाबा ने इशारा दिया कि मुन्नी दीदी को बोलो वो आपके लिए गाड़ी भेजे। फोन कर दिया मैंने कि मेरे ऐसे गिर रही हूं और दीदी मैं चल नहीं पाऊंगी, आप गाड़ी भेज दो। उन्होंने गाड़ी भेज दी। लेकिन इतनी बड़ी स्टेज पर लंगड़ाते हुए आना ये शर्म की बात है। चलूंगी कैसे, चलते ही नहीं बन रहा था। तो बाबा ने यही कहा, तुम चलो मैं चलाऊंगा, तुम बैठो मैं क्लास कराऊंगा। मैं रियल बता रही हूं, मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ लगा ही नहीं है। बस यहां आने वाले भैया को यही कहा कि मुड्डा दे दो तो पैर में फैला लो, ऐसे तो मुड्डा दे दिया, मैं पैर फैला करके क्लास करा रही हूं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद क्लास कराने के बाद जब मैं गई कमरे पर तो फिर दर्द वैसा का वैसा। हमारे बड़े भाई साहब महेंद्र भाई साहब थे, कहा चलो ऊपर में ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखा देती हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में जब दिखाने के लिए गए तो हमारे डॉक्टर आदरणीय प्रताप मिड्डा जी थे, एक्सरे वैक्सरे कराए, सब देखा, तो उन्होंने क्या बताया कि इनका घुटना तो गया काम से, तो घुटने में अब दम नहीं है, अब तो अहमदाबाद भेजना होगा और नया घुटना चेंज करना होगा। ये बात सुनकर के मैंने कहा अहमदाबाद तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले बाबा के कमरे में पांडव भवन जाती हूं। तो पांडव भवन गई और बाबा से मैंने कहा कि बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसका पनिशमेंट ये मिला है। तो बाबा ने बहुत सहज रूप से कहा कि भूल बहुत बड़ी हुई है, क्या हुई है उसमें सुधार लाएंगे। तो बाबा ने कहा भूल ये हुई है कि बचपन से तुम यहां पांडव भवन में आती, बराबर आती, अब नीचे जब से शांतिवन बन गया है तुम पांडव भवन नहीं आती हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, सारे गुण सारी शक्तियां सारी कलाएं आ गई, अब जरूरत नहीं है, ये तपोभूमि है, ये वरदान भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये तपस्या भूमि है, अभी इसकी जरूरत है, मैंने तुम्हें टांग खींच के बुलाया है, अभी आई हो ना, जब टांग खींची तब आई हो। तो मैंने फिर बाबा से कहा कि बाबा ये घुटना चेंज ना करना पड़े ऐसा कोई उपाय बताइए, मैं सारा पुरुषार्थ करूंगी। तो बाबा ने मालूम है क्या कहा, बाबा ने कहा तुम प्रतिज्ञा करो कि जब भी शांतिवन आऊंगी तो मेरे से मिलने तुम पांडव भवन जरूर आओगी, अगर तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है तो मेरी प्रतिज्ञा है तुम्हें घुटना चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक घंटा 40 दिन बैठ के तुम योग करना कि मेरा घुटना सेट हो रहा है, हड्डी मसल सेट हो रही है, जो भी कार्टेज पड़ गई है सेट हो रही है, और 40 दिन के बाद दिखाना डॉक्टर को क्या पोजीशन है। बाबा साक्षी है कि 40 दिन में मेरा घुटना एकदम ओके, और आज दिन तक, ये 2006 की बात बता रही हूं, आज दिन तक ये घुटना तो बोल जाता है कुछ, ये घुटना सेट है बिना दबा के, पर थोड़े दिन के लिए पट्टा बांधा और जहां जरूरत पड़ी वहां चलना फिरना बराबर। कहने का भाव ये है भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाते हैं, बशर्ते हम अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करें और निभाएं। तो जब हमारे अंदर में आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास की जितनी जितनी शक्तियां अर्जित होती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी स्टेज बाप समान बनती जाती है। और जब बाप समान बन जाएंगी तो आप जानते हैं कि रावण के साथ युद्ध करने के लिए तो ताकतवर ही चाहिए ना, छोटा मोटा तो कोई नहीं कर सकेगा, उसको पराजित। इसलिए बाप समान बना करके बाबा हम बच्चों को प्रत्यक्ष कराना चाहते हैं, और ये बाबा की तरफ से निश्चित रूप से 100% श्योरिटी है कि मेरे बच्चे जब प्रत्यक्ष होंगे तभी मैं प्रत्यक्ष होऊंगा। पढ़ाई पढ़ रहे हो और परीक्षा का समय आए तो हम फेलियर हो रहे हो तो फिर हमारी पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है ना। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना ही माना हम बहुत अच्छे होशियार स्टूडेंट हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं। तो जब जहां जैसी भी परिस्थिति बने तो बाबा ने कहा जब तुम्हारे वश की बात नहीं हो तो हमेशा को बाबा आ जाओ और इस समस्या का हल आप करो, पर अपने आप को निमित्त बना करके बाबा को ऑफर करो। तो जब हमारे अंदर में ये आत्मदर्शन परमात्म दर्शन की शक्ति आ जाएगी, परीक्षाएं समस्याओं का हल स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। साथ ही साथ वर्तमान दर्शन और भविष्य दर्शन, इन दोनों को टैली करना है। हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा कब सत्युग आएगा, कब महाविनाश होगा, कब ऐसा परिवर्तन होगा। अपने दिल पर हाथ रख के देखो, दिल पर हाथ रख के देखो कि जब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जहां आप बच्चों की जरूरत पड़ेगी, जहां आप बच्चों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे समय पर आप महारथी बनकर के फील्ड वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान इतना अच्छा है तो भविष्य तो 100% अच्छा है ना। अब चेक योर सेल्फ, कोरोना काल आया, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, अच्छे अच्छों ने क्लास करना छोड़ दिया, मना है, नहीं जाएंगे, कोरोना चल रहा है। अब अपने आप से पूछो कि डॉक्टर उस समय लगे हुए थे, सब्जी वाले भी लगे हुए थे, चाय दूध वाले भी बेच रहे थे, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो मार्केट भी खुला था, उनके लिए कोरोना नहीं था, जो आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए थे। और डरपोक आत्मा है, घर के दरवाजे बंद करके ना हम जाएंगे और ना किसी को हम बुलाएंगे, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। एक परीक्षा ही आई थी, छोटी सी परीक्षा आई थी, अभी तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी। क्लासें बंद हो गई थी, बाबा के रेगुलर स्टूडेंट एकदम छुट्टी। तो ये समय अपने आप को दिखाने का है या दरवाजे बंद करके चुपके से बैठने का है, ये चेक करना है। जब एग्जामिनेशन का टाइम आए डर के मारे स्टूडेंट नहीं जाए, जाए ही नहीं, अच्छे स्टूडेंट हैं। हमारी परीक्षाएं तो ऐसी होंगी ना कि उस समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। अब देखो कितनी परीक्षाएं आएंगी, लास्ट का टाइम है ना। तो जब आपके अंदर हिम्मत होगी कि मुझे ऐसी परीक्षा में पास होना है, अरे जाना तो एक बार है, सेफ्टी तो करनी है, पर जल्दी से वो जाएंगे जो डरपोक होंगे, बाद में वो जाएंगे जो हिम्मत वाले होंगे, ये तो निश्चित बात है। हिम्मत की श्वास आ रही है ज्यादा जिएंगे, और हिम्मत की श्वास ही खत्म हो गई वो तो वहीं ढह हो जाएंगे। तो परीक्षाओं से क्यों घबराना, समस्याओं से क्यों भागना, एग्जाम से क्यों भागना, ये अच्छी बात है। पर हम हैं कौन, बाबा ने अव्यक्त वाणी में ये बात कितनी बार कही है, अगर आप सभी को याद नहीं हो तो मैं याद दिला रही हूँ कि बच्चे वो समय आएगा जब आपको अपनी सेफ्टी भी करनी होगी और दूसरों की सेफ्टी करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरों की भी सेफ्टी करनी है, अपनी भी सेफ्टी करनी है, चुपके से घर में नहीं बैठना है। डॉक्टर लोग घर में बैठ जाए, हॉस्पिटल ना खोले, आपको कैसा लगेगा? वो भी तो इंसान है ना, भगवान तो नहीं है, उनको भी तो जीना है ना। लेकिन वो महत्व तो किसको दे रहे हैं? अपनी जिम्मेवारी को। तो हमारे अंदर इतना आत्मबल, इतना परमात्म बल होना चाहिए कि अपनी सेफ्टी भी करें और दूसरों को दुआएं भी दें, शक्तियां भी दें, उनको हर प्रकार से हिम्मत उल्लास का ऑक्सीजन भी दें। ये करना होगा कि नहीं करना होगा? जो चाहते हैं कि करना होगा यार, हाथ तो खड़ा करें, है ना? ऐसे तालियां बजाओ अपने आप से। और इस बात का एहसास निरंतर आपके मन में रहना चाहिए कि मैं निर्भय आत्मा हूं, शक्तिवान शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर भगवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं साधारण नहीं हूं, भगवान हमारे साथ है। भगवान का साथ और हाथ सदा अनुभव में करना चाहिए, हम अकेले नहीं है। हम गीतों में सुनते हैं, सुनाते हैं, साथी है भगवान, तो क्या करेंगे आंधी और तूफान? जिनको जाना होता है, जिनका समय निश्चित हो जाता है, वो तो बैठे बैठे चले जाते हैं, खाते खाते चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। और फिर हम कौन है? हम जीव दान देने वाले हैं, जियो और दूसरों को भी जीने दो। हम वो महान आत्माएं हैं, जबकि आपके मन के अंदर में ये बात निरंतर रहेगी कि हम दूसरों के रक्षक हैं, गाइड हैं, हम जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। तो हमारी मानसिकता बहुत पावरफुल। तो इस बात का आज से अनुभव करना है। देखो हमारा ये सिर है, सिर के दो साइड हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड में जो हमारी संकल्प शक्ति काम करती है, जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, इससे हमारे सेल चार्ज होते हैं। जितना जितना पॉजिटिव 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 आप सोचेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पॉजिटिव पावरफुल, तो आपके सेल जो है चार्ज होते रहेंगे। और जब आपके मन में नेगेटिव ऐसे संकल्प चलते रहेंगे, तो वो सेल जो होते हैं हमारे डैमेज होते हैं। और जो डैमेज सेल होते हैं तो क्या करते हैं? वो खुद तो डैमेज हो ही जाते हैं, साधन को भी डैमेज कर देते हैं। सेल खराब होना माना, निकाल दो, अच्छे सेल लगाओ, नए सेल लगाओ। तो जिसके सिर के अंदर में डैमेज डैमेज सेल हैं, बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है, वो क्या काम करेगी? वो तो कुछ नहीं करेगी। तो हम प्रतिज्ञा कर लें, हम कैसे भी हैं, बाबा इस बात को बार बार समझाते, तुम कैसे भी हो, नहीं है तुम्हारे में ताकत, 100% आपको मालूम है कि मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, अब तो हम बेकार हो गए, अब तो हम बुढ़े हो गए, अब हम इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फायदा है? इससे तो कोई फायदा नहीं है। आप अच्छा सोचो, पावरफुल सोचो, उसे तो फायदा है। तो समझदार होशियार बच्चों की निशानी क्या है? पॉजिटिव सोचना। तो पॉजिटिव सोचने से हमारी जितनी भी शक्तियां क्षीण हो गई हैं उन्हें चार्ज हो जाएंगी। ये 100% राइट है, विज्ञान भी कह रहा है, भगवान भी कह रहा है, ये 100% राइट है। तुम्हें राइट वे पे चलना है ना, रॉन्ग वे पे तो नहीं चलना है। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब रॉन्ग वे पे चले जाते हैं। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हमसे कुछ नहीं होता, तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वहां परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो आज के शुभ दिवस पर क्या दृढ़ संकल्प करेंगे और कौन कौन करेंगे? कि सदा पॉजिटिव सोचें, सदा पॉजिटिव सोचें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपको सोचने में क्या लगता है? फीस लगेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, स्कूटर गाड़ी उठानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है, केवल सोच। फ्री कहां, नेचुरल, ऑटोमेटिक, उसमें दिक्कत होती है। कि जो सहज है, जो नेचुरल है, वो आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपकी आयु बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब आप नेगेटिव 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 में चले जाएंगे ना, तो आपकी आयु घटती जाएगी। देखो मैं आपको अपने ही अनुभव सुना रही हूं। अनुभव तो उसे ही कहते जो अपने साथ होता है। दूसरे का अनुभव दूसरे का है, अपना अनुभव अपना है। गारंटी कौन दे सकता है? जिसने अनुभव किया है। तो बचपन का अनुभव है, जिस अनुभव के आधार पर मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूं। मैं छोटी थी, 8 वर्ष की थी, जोशी ने हमारा हाथ देखा और हमारी माँ को बताया कि बच्ची बहुत अच्छी है और इसकी आयु बहुत कम है। ये 16 वर्ष की होगी, चली जाएगी, इससे ज्यादा इसकी आयु नहीं है। बताओ, इस बात को सोच करके, मैं तो छोटी थी पर मन में तो आ गया मैं ज्यादा जी नहीं सकती, और हमारी माता जी को भी संकल्प आ गया कि मेरी बच्ची चली जाएगी। तो बहुत प्यार से स्नेह से कहा, बेटा जाना तो है ही है, भगवान की बन जाओ, भगवान शायद तुम्हारे ऊपर ऐसी मेहर कर दे कि तुमको बचा ले। तो जीवन के इतिहास में शिव बाबा के नाम पर मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि हे भगवान, मैं रोजाना क्लास करूंगी। 8 बजे 9 बजे सो के उठती थी, मैं 4 बजे उठना शुरू कर दिया। 1 घंटा अपने लिए योग लगाती। अब भगवान तो भगवान है, उसके लिए क्या योग लगाना, अपने लिए योग लगाना, वो तो है ही योग्य। मुझे तो अपने को बचाना है, अपने को सेव करना है। इस संकल्प से मैंने योग किया। 16 साल की हुई तो ये जो कहावत है, होनी तो होके रहे, लेकिन जिसका साथी भगवान उसको मार सके ना कोई। 16 साल की जैसे हुई वैसे ही मुझे खांसी हुई, और खांसी हुई तो डॉक्टर को बुलाया और खांसी की दवा ली। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन वो कौन सी शीशी में दी? डिटॉल की शीशी में। क्रॉस कर दिया, लिख दिया खांसी की दवा, सावधान भी कर दिया कि बहन जी इसको बाथरूम में नहीं रखना, ये खांसी की दवा है, इसकी जगह डिटॉल नहीं पी लेना। अब मेरे पास में शीशी नहीं थी, अचानक जल्दी लेके आया हूं तो ये शीशी खाली थी, दो दिन अच्छे से पी। तीसरे दिन हमारे साथ में रहने वाली बहन को ये लगा ये डिटॉल यहां क्यों रखी है, उन्होंने वही बाथरूम में रख दी। और जब मैंने खांसी की दवा मांगी वो रियल डिटॉल ले आई, मैंने देखा नहीं, होनी तो होती है ड्रामा जो फिक्स होता है। एक चम्मच डिटॉल पी, डायरेक्ट डिटॉल पीना कितनी बड़ी बात होती है, जैसी पी वैसी कलेजा जल गया। और मैंने कहा कि तुमने खांसी की दवा नहीं दी है, डिटॉल दी है। अब डॉक्टर को बोला रहे एक घंटा हो गया डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर मेरे को घी में और किसमें नमक डाल के पानी पिला रहा है। वो तो चली गई अंदर, चली गई तो दो मास पूरा ट्रीटमेंट चलता रहा, न कुछ खा पा रही न कुछ पी पा रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब ये बचने वाली नहीं है, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन भगवान डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया। भगवान डॉक्टर ने क्या कहा, मैं ठीक करूंगा। तब मैं आगरा में रहती थी और आगरा से मुझे भोपाल बुलाया और भोपाल बुला करके बाबा ने जो डायरेक्शन दिए, मन में बात करते करते कि बच्ची तुम बिल्कुल हल्की हो जाओ, आराम से सो, खेलो कूदो, क्योंकि वीक हो गई थी, और मौसमी का जूस पियो, साबूदानी खिचड़ी खाओ, 15 दिन रहो, तुम ओके, तुम्हारा लीवर जो छलनी हो गया था लीवर ठीक हो जाएगा। और 15 दिन के बाद आई एम ओके फिट। आप सोचिए जिसका लीवर छलनी हो गया हो उसको कोई डॉक्टर बचा सकता है? भी क्या बोलते हैं, लीवर प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, होता है कि नहीं? कुछ नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, केवल बाबा ने अपने वाइब्रेशन दिए, पॉजिटिव संकल्प दिए कि मैं ठीक करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अब तुम चाहे समोसा खिलाओ चाहे जलेबी खिलाओ, सब उसी लीवर में चल रहा कारोबार, बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लास्ट का टाइम आ रहा है, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे, उनकी दवाइयां काम नहीं आएंगी, परिस्थिति ऐसी बन जाएगी आप जा भी नहीं पाएंगे, तो कौन काम आएगा? सुपर डॉक्टर। और सुपर डॉक्टर कैसे काम करेगा? वो इंजेक्शन ही लगाएगा, वो टैबलेट नहीं खिलाएगा, वो पावरफुल संकल्प देगा, जहां आवश्यक है मिल रहा है ठीक है दवाई खा लो, मना नहीं है, लेकिन दवाई से ज्यादा क्या खाओ, क्या खाओ? दुआएं, सबकी दुआएं लो। जितनी दुआओं का कोटा हमारा पूरा होता जाएगा उतनी हमारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और आज सबके लिए ये चैलेंज की बात है कि भविष्य तो हमारा इतना अच्छा होगा, 100% होगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट आउट कहाँ होगा? हम ऐसे होंगे जहां कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वो ऐसी दुनिया होगी, उसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा? तो यही निकलेगा ना, चैलेंज हम यही करेंगे ना, अनुभूतियां यही करेंगे ना। इसलिए बाबा का इशारा है बच्चे वर्तमान को भी देखो और भविष्य को, दोनों को देखे टैली करो, भविष्य और वर्तमान मेरा कैसा चल रहा है। जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव वर्तमान को देखेंगे 100% वैसा ही भविष्य 100% रहेगा। तो मेरी शुभ भावना है कि आज के शुभ दिवस पर हम सभी बाबा मिलन करने के लिए आए हैं, और बाबा को अपना सच्चा दोस्त बना लें, सच्चा डॉक्टर बना लें, सच्चा साथी बना लें, तो हम अभी से अपने आप को चैलेंज करें कि मैं स्वस्थिति वाली ऐसी विशेष आत्मा हूं जिसके सामने परिस्थिति सलाम करे, एकदम सलाम करे, कैसा भी रूप धर के आए, कैसा भी कारण बना के आए, लेकिन वो हमको सलाम करके जाए। तो जितनी हमारी शुभ भावनाएं रहेंगी उतनी हमारी शक्तियां हमारे पास आएंगी, और जितनी हमारे अंदर में कमजोर भावनाएं होती हैं तो शक्तियां हमारी आउट हो जाती हैं। कल की मुरली में या परसों के, कल संडे था ना, बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के साइंस कट भी कर सकती है, ठीक भी कर सकती है, जोड़ भी सकती है, लेकिन जहां ये साइंस कुछ नहीं कर सकती वहां सब कुछ साइलेंस पावर कर सकती है। तो जब देखो कि साइंस काम नहीं कर पा रही है तो अपनी साइलेंस पावर को हम बढ़ाते जाएं, और जितना जितना हम साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे उतनी उतनी सफलता हमारा गले का हार बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तुम मेरे हो, सौ बार तुम्हारा कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला ऐसी करुणा ऐसी ममता ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है प्यार में प्रभु के दिल खो जाता आँख सजल हो जाती है कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है सोचो तुमको कौन मिला है कौन तुम्हारा साथी है कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती